Thank you, sir. Om Shanti, good evening, everyone. आप लोग सब खुश हैं कि नहीं खुश हैं अभी प्रीवियस सेशन यू हैड उत्साह में है कि नहीं यू आर द बेस्ट हैप्पीएस्ट ओके थोड़ा सा भाई साहब ने गलत बोल दिया फाइटर पायलट मेरे कलीग बैठे हैं ग्रुप कैप्टन राव MiG-29 पायलट और मैं स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर हूं मैंने हिंदुस्तान की स्काई डाइविंग टीम को लीड किया आकाशगंगा और अभी तक 1250 बार जंप किया हुआ जहाज से और रिटायरमेंट वर्ड मैं यूज नहीं करता आई लेफ्ट एयरफोर्स अर्ली Now I do adventure sports parasailing. I have done 120,000 launches and ranked number one in the world for this. So now let's introduce Didi ji. In fact, मैंने ज्ञान में आया हूँ just 2 साल पहले ही मैं भी खरगोश की तरह पहले पीछे बैठा करता था So this is my second visit to this place and it's my great privilege to introduce Didi Kamala Didi who has come from Delhi. She is heading the Brahma Kumari Center there in Dwarka, Sector 17, right, sir? And Didi Gyan mein hai last 38 years se. Didi ka bahut jyada corporate experience hai, all levels pe, medium level pe, higher level pe, small levels pe. Aur Didi judi rahi hai humare security wing se for last 15-20 years se. And Didi gave a talk in Northern Command, Indian Army, and Western Command. ईस्टर्न कमांड सदर्न कमांड ऑफ इंडियन नेवी और दीदी ने बहुत सारे पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी एड्रेस किया है लाइक बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ एनएसजी आरपीएफ एंड ऑफकोर्स एनएसजी और क्वालिफिकेशन दीदी डिड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके बाद दीदी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है क्राइसिस मैनेजमेंट में और सेल्फ मैनेजमेंट में दीदी हैज ऑल्सो डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन सेल्फ रियलाइजेशन and spirituality. So, Didi has been transforming life all over the world. It's our privilege, ye hamara saubhagya hai, Didi aaj hamare ko address karengi spirituality ke baare mein. Over to you, Didi. Om Shanti.
Om Shanti. Aapki Om Shanti badi thandi hai. सभी एक बार मिल करके बोलेंगे अच्छे से बुलंद आवाज में और अनुभव के साथ ओम मन मैं आत्मा शांत हूं शांत स्वरूप हूं इस अर्थ को अनुभव करते हुए कहेंगे कहें थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलेंगे साथ में ओम शांति अच्छा थैंक यू अभी आप जब से यहां आए हैं बहुत मेडिटेशन 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 सुन रहे हैं है ना अब मेडिटेशन वास्तव में क्या है उसका पूरा ये पद्धति क्या है और इसको कैसे किया जा सकता है वो आज हम चर्चा करेंगे कई बार कई लोगों को लगता है मेडिटेशन का मतलब एक जगह इस एक स्थान पर देखते रहो और कुछ ना सोचो सब कुछ भूल जाओ ये मेडिटेशन नहीं होता है मेडिटेशन का मतलब थॉटलेस होना नहीं होता है निर्संकल्प होना नहीं होता है मेडिटेशन का मतलब होता है टू क्रिएट राइट थॉट्स फॉर एनी मोमेंट मतलब किसी भी समय के लिए हम सही सोच पाए और जो सोचना है वो मेरे मन में विचार आ सके मेडिटेशन का मतलब शून्य हो जाना नहीं होता है और आप ट्राई भी मत करना क्योंकि वो हो नहीं सकता है क्योंकि मन का काम है सोचना वो सोचेगा जरूर आप कहो सोचना ही नहीं है वो नहीं हो सकता है इसलिए और अगर मेडिटेशन जैसे कई लोग कैंडल के ऊपर रखकर करते हैं कुछ लोग किसी और चीज पर रखकर करते हैं कुछ लोग सोचते हैं कॉन्सेंट्रेट करना ही मेडिटेशन है ध्यान लगाना ही मेडिटेशन है नहीं कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है बट यस वी नीड द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्डर टू मेडिटेट मतलब हमें मतलब फोकस करने की मतलब कॉन्सेंट्रेट करने की ध्यान लगाने की जो शक्ति है हमारे पास मन और बुद्धि को किसी एक चीज पर फोकस करने की शक्ति है, उस शक्ति को यूज करते हुए हम ये मेडिटेशन नाम की साधना को करते हैं। राजयोग एक साधना है ना? मेडिटेशन एक साधना है ना? तो साधना के लिए क्या चाहिए? समय और थोड़ी सी मेहनत अपने ऊपर। जब हम राजयोग कहते हैं, देखो वैसे दुनिया में बहुत सारे प्रकार के योग बताए जाते हैं। भक्ति योग होता है, हठ योग होता है। हठ योग माना जिसमें आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस ये सब आता है ना, उसको कहते हैं हठ योग। भक्ति योग होता है, हठ योग होता है, ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, बहुत सारे प्रकार के योग होते हैं। लेकिन संसार में भी ये मान्यता है कि सभी योग का जो राजा है ना, वो है राजयोग। इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, पर ये विद्वान जो अध्ययन करते हैं आध्यात्मिकता का, वो ये बात जानते हैं। क्योंकि राजयोग से हमारी सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। उससे मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर, आत्मा सब पर कार्य एक साथ होता है। तो इसलिए राजयोग का अभ्यास हमारे संपूर्ण जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है, क्योंकि हमारे सोच में सकारात्मकता बढ़ती है, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, वाणी में, सभ्यता में, जीवन में, कर्म में, संबंध संपर्क में श्रेष्ठता आती है राजयोग से। अभी जैसे भाई साहब ने कहा, मेडिटेशन अच्छा करोगे ना तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। कुछ लोग इस बात से डर जाते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं, भाई हमें आगे कहीं नहीं जाना है, हम यहीं ठीक है, बस थोड़ी बहुत मन की शांति मिल जाए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने के लिए सफेद कपड़े पहनने जरूरी हैं, जरूरी नहीं है। आश्रम में रहना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, कट ऑफ होना पड़ेगा समाज से, कोई जरूरत नहीं है। अगर आश्रम में रह करके भी मेरे मन की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो वो मैं अभी भी हलचल में हूं। लेकिन अगर आप परिवारों में रहने के बाद भी राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने मन में शांति, शक्ति और खुशी को बढ़ाकर रख सकते हैं, जो कि संभव है, तो फिर तो एक ही बात हो गई ना। तो बात मन की स्थिति की है। तो जो राजयोग है, राजयोग का अर्थ होता है राजा बनाने वाला योग, स्वयं पर राज्य करना सिखा दे, अर्थात अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर मेरा, मुझ आत्मा का पूर्ण राज्य हो, मैं अपने मन को चला सकूं आत्मा, न कि मेरा मन मुझे चला रहा है। आज क्या हो गया, आत्मा राजा है, सारी कर्मेंद्रियां इसकी प्रजा है, पूरी राजधानी है इधर। लेकिन आज राजा कमजोर हो गया, मन बता रहा है मुझे क्या करना चाहिए, आत्मा अंदर से बोल रही है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, पर आंखें देखती जा रही हैं, है ना। मुख से ये बात बोलना नहीं चाहिए, ये बुद्धि कह रही है, लेकिन कौन मुख से निकल जाता है। तो आज कर्मियों का राज्य चल रहा है, राजा कमजोर हो गया, लेकिन राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है, प्रैक्टिकल लेवल पर डेली रूटीन के अंदर इतनी ताकत आती है कि हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने संस्कारों को अपने अनुसार चला सके। ठीक है, जैसे दो चीजें ब्रह्मा कुमारीज में दो चीजें सिखाई जाती हैं। जब भी आप सेंटर्स पर जाएंगे ना, आप लोग जहां कहीं भी रहते हैं, वहां पर नजदीक में कोई ना कोई ब्रह्मा कुमारीज आश्रम जरूर होता है, आसपास होगा ही, आप पता करना। वहां पर एक 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स होता है, किसी भी नयों को, किसी भी व्यक्ति को शुरू शुरू में 7 दिन का कोर्स, जिसमें रोज आपको 1 घंटा देना है, सिर्फ 45 मिनट या 1 घंटा बस। अगर आप रोज 7 दिन तक ये 1 घंटे का समय निकालते हैं तो आपको पूरा, यहां जो आप सीख रहे हैं वो भी वहां पर बताया जाएगा, थोड़ा सा और समय दिया जाएगा और साथ ही साथ और भी जो हमारी ज्ञान की बातें हैं, हमारी मतलब मेरी नहीं, आपकी नहीं, मेरी नहीं, परमात्मा ज्ञान की बातें हैं जो हमें जीवन में काम आती हैं, वो बताई जाएंगी। ज्ञान और योग, योग करना सिखाया जाएगा और थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे। तो ज्ञान और योग दो चीजें इस संस्था में हम लोग सिखाते हैं। ज्ञान का सीधा सा मतलब होता है समझ और क्लैरिटी, है ना। ज्ञान का मतलब क्या होता है? समझ और क्लैरिटी। किस बात की समझ, किस बात की क्लैरिटी? हर उस बात की क्लैरिटी जिससे हम संबंधित हैं, जिस भी चीज का असर हमारे ऊपर आता है और जिस भी चीज के ऊपर हमारा असर जाता है, इम्पैक्ट जाता है, हर उस बात के बारे में हम समझते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं। जैसे हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारे संस्कार है, व्यवहार है, विचार है। जैसे हम लोग आश्रम में रहते हैं, कई लोग कहते हैं कि बहन जी आपका मेडिटेशन कुछ ऐसा कर सकता है क्या, थोड़ा देर हम सोचना बंद कर दे। सोच सोच के सिर में दर्द हो जाता है आजकल, सोच सोच के रातों को नींद नहीं आ रही है लोगों को। लेकिन सत्यता पता क्या है, इंसान कभी भी सोचने से परेशान नहीं होते हैं, ज्यादा सोचने से परेशान होते हैं। मेक सेंस? क्लियर हो रहा है? अगर मन ठीक से सोच रहा है, जो सोचने की जरूरत है वो सोच रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ही नहीं। पर मन आजकल जरूरत से ज्यादा सोचता है, तो जो ज्यादा है ना, उसको ठीक करना संभव है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं, ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम, नकारात्मक सोचने की प्रॉब्लम, व्यर्थ मन को चलाने की दिक्कत, ये सब ठीक हो जाता है, 100% ये कम हो जाता है, ये हमारा अनुभव कहता है। ठीक है, तो राजयोग, सबसे पहली बात, योग शब्द का ही अर्थ क्या है? अक्सर करके जैसे ही हम योग कहते हैं तो हमें लगता है फिजिकल योगा, अच्छा योगा मतलब एक्सरसाइजेस। नहीं, शरीर का योग अलग है, वो योगा है जिसमें हम शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, मूव करते हैं, हर एक अंग को एक्सरसाइज करवाते हैं। लेकिन जो मन वाला योग है, जिसमें मन की मूवमेंट होती है, जिसमें मन को हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं, अभी बहुत जकड़ा हुआ है मन, सहन नहीं होता, समाया नहीं जाता, पॉजिटिव सोचा नहीं जाता, आपको जो करना कर लो, मैं तो ऐसे ही हूं, ये वाला ये स्टिफ हो गया है मन। जैसे हड्डियां होती है ना, उसको मूव ना करो, एक्सरसाइज ना करो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टिफनेस, जकड़ जाती है हड्डियां, स्टिफ हो जाती हैं, फिर हिलना डुलना ही मुश्किल होता है, कोई काम करना तो दूर की बात। ऐसे कभी कभी हमारे मन के अंदर भी स्टिफनेस आ जाता है, रिजिडिटी आ जाती है, उसके बाद थोड़ा सा मोल्ड होना, थोड़ा सहन करना, थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करना, थोड़ा अकोमोडेट करना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर बहुत सारे गुण और शक्तियां विकसित होती हैं। ठीक है, तो ज्ञान में हमने जो समझा है उसको लागू करने के लिए हमको शक्ति चाहिए, अर्थात विल पावर चाहिए। वो विल पावर हमको कहां से मिलती है? मेडिटेशन से मिलती है। इसीलिए ज्ञान युक्त होकर योग करना जरूरी है। अब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बहन जी ऐसी बात नहीं है, हम करते हैं मेडिटेशन, हमने बहुत ट्राई किया हुआ है, हम ऐसी बात नहीं है, हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, करते रहते हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन पता नहीं आजकल गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ रहा है मुझे, आजकल पता नहीं रनिंग थॉट्स को रोका नहीं जा रहा है। मेडिटेशन का मतलब ही क्या होता है? मेडिटेशन जो शब्द है ना, वो लैटिन वर्ड मेडिरी से निकला है, मेडिरी, और मेडिरी का अर्थ होता है टू हील, हीलिंग, है ना। लेकिन हील व्हाट, किस चीज को हीलिंग, हीलिंग करना क्या होता है, हीलिंग करना क्या होता है बताइए, हीलिंग करना मतलब जी, हाँ, किसी चीज, जो चीज बिगड़ गई है उसको ठीक करना है ना। जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो कुछ प्रकार की हीलिंग्स होती हैं। वो हील क्या होती है? मेरा मन बहुत अशांत है, वो शांत होने लगता है, दैट्स हीलिंग। मेरे बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, रनिंग थॉट्स चलते हैं, बहुत विचारों में टर्बुलेंस है, ऐसा ऐसा मन भागता रहता है, मन एकाग्र होने लगता है, विचारों में स्थिरता आती है, विचारों में शक्ति आती है, ये हीलिंग है। किसी का मनोबल गिरा हुआ है, किसी का मन की शक्ति जो है वो इस समय बहुत कम हो गई है, मन कमजोर हुआ हुआ है, छोटी छोटी बातों में रोना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, उनके मन में ताकत आती है, पेशेंस बढ़ता है, ये हीलिंग है। इस प्रकार की हीलिंग अर्थात हमारी मन की जो स्थिति है, उस मन की स्थिति को आज जो भी मेरी मन की अवस्था है उससे उसको स्टेप अप करना, अर्थात उसको अगले लेवल, अर्थात मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना, ये राजयोग का काम है। राजयोग से ये प्राप्ति होती है। आप में से कौन कौन है जो आज आपकी जो भी मन की स्थिति है, भले अच्छी भी हो सकती है, आज आपकी जो भी मन की स्थिति है उससे आपको भी लगता है कि नहीं थोड़ा और अच्छा होना चाहिए? किस किस को ऐसा लगता है? है ना, ऑलमोस्ट सभी को। तो राज योग, ऐसा योग का मतलब ही होता है कनेक्शन। कहते हैं ना, जैसे इनके साथ बहुत अच्छा योग है, इस व्यक्ति का इस समय के साथ बहुत अच्छा योग है। योग का मतलब कनेक्शन, रिलेशन, संबंध, राइट? योग का मतलब कनेक्शन। तो कनेक्शन किसके साथ? जब हम राजयोग करते हैं दो बहुत ही हाईली पॉजिटिव एनर्जीज से हम जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। वो दो बहुत ही हाईली पॉजिटिव एनर्जीज कौन सी हैं? पहला, मेरी अपनी अंतरात्मा, मेरे अपने मन, बुद्धि और संस्कारों के साथ मेरा बहुत डीप कनेक्शन होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए मेरे मन में, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा तो ये कारण है, अच्छा ये चीज है, चलो मुझे बदलना है तो मुझे क्या करना है। मतलब मेरा इतना अच्छा कनेक्शन हो अपनी आत्मा के साथ, मेरा कनेक्शन मेरे साथ जब अच्छा होगा तो बाहर मेरा कनेक्शन अन्य के साथ अच्छा होने की पूरी संभावना है। जिसको अपने अंदर ही पता नहीं लग रहा क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका दूसरों के साथ कनेक्शन कैसा होगा? तो इसलिए एक रिकनेक्टिंग विद योर ओन सोल, अपनी आत्मिक शक्ति के साथ हमें जुड़ना है, कनेक्ट होना है, योग लगाना है, अर्थात एकाग्र होना है। दूसरा, परमात्मा शक्ति के साथ। आज सुबह आपको कुछ विचार आपके सामने रखे होंगे परमात्मा के परिचय के बारे में, दीपा दीदी ने सुनाया होगा। तो देखो, आज भगवान को देखो, कल भी आपके सेशंस थे, आज सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शक्ति को बढ़ाना, क्योंकि मन की शक्ति से तन चलता है ना? हाँ, तन भले बहुत अच्छा हेल्दी है, हेफ्टी तेफ्टी है, लेकिन मन कमजोर है तो क्या होगा? थोड़े दिनों में तन भी कमजोर हो जाएगा। तो मन की शक्ति आज बहुत जरूरी है, और मन की शक्ति दो चीजों से बढ़ती है, दो चीजों से, दो बातों के अभ्यास से आप मन की शक्ति को बहुत अच्छा कर सकते हो। सबसे पहला है अपनी सत्यता, अर्थात आत्मिक स्मृति में बार 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 एकाग्र होकर योग करना, अर्थात अपनी सत्यता से बार बार विचारों में जुड़ना। सोल कॉन्शियस होकर के आप अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाओ। इससे जब हम आत्मिक स्मृति को बार बार अपने मन में लाते हैं विचारों में, तो आत्मा के गुण और शक्तियां काम करने लग जाती हैं। आत्मा के अंदर, सोल के अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है पता है? कोर में हमारी आत्मा सतोगुणी है। आपको बताया होगा ना, सात गुणों से आत्मा बनी है। किसी को याद है कौन कौन से गुण है उसमें? बताओ। हाँ जी, है ना? चलो मैं आपको सरल कर देती हूँ। स्लाइड में दिख रहा है ना, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये काम करने लग जाएगी। इसकी एनर्जी आपके विचारों में, वाणी में और व्यवहार में आने लग जाएगा, जितना जितना हम आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं सारे दिन के दिनचर्या में। और दूसरा, जितना जितना हम सारे दिन में कर्म करते हुए उस ईश्वर पिता को बार बार याद करते हैं ना, उतना हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। आपको पता है, असंभव है, हो नहीं सकता कि शांति के सागर पिता को उसकी अपनी संतान आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा याद करे और हमारे मन में शांति ना हो। ये हो नहीं सकता है, असंभव। लेकिन आजकल तो हो रहा है। एक तरफ भगवान को भी याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ मन में जो चल रहा है वो चल रहा है। इसका मतलब कुछ तो डिस्कनेक्ट है ना। मेरी भक्ति, मेरा कनेक्शन मुझे मदद क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कुछ तो डिस्कनेक्ट है ना। तो मेडिटेशन का मतलब होता है आत्मा अपने सत्य स्वरूप में बार बार स्थित हो रही है अपने विचारों से, और उस परमात्मा शक्ति के सत्य स्वरूप को याद करती है, एकाग्र होती है। इसको कहते हैं राज योग मेडिटेशन। इससे क्या होता है, देखो, जिस भी सात गुणों से हम बने हैं ना, उसका वो सागर है, सोर्स है। हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं, वो शांति का सागर कहलाता है। हम शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं, वो शक्तियों का भंडार कहलाता है। हम आनंद स्वरूप आत्मा है, वो निजानंद स्वरूप है। तो आज हमें ज्ञान की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है, शांति की जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सोर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत शांति, एक दो दिन की शांति आपको मिल सकती है, भले आप किसी शांत व्यक्ति से बात करेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशनुमा व्यक्ति से आप बात करेंगे आपको 15 मिनट बहुत अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी 15 मिनट की। आपको एक दो महीने की शांति चाहिए या सदाकाल की चाहिए? पक्का? कौन कहता है सदाकाल की चाहिए? और शांति का मतलब क्या होता है? शांति का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग हो जाओ, वो शांति नहीं है, वो सन्नाटा है, वो किसी को पसंद नहीं आता। शांति का मतलब होता है जब हमारा मन शांत होता है तो हम बहुत एक्टिव होते हैं, तन से भी मन से भी। जब हमारा मन शांत होता है हम बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं बुद्धि से। जब हमारा मन शांत होता है हम बहुत सपोर्टिव होते हैं, सहयोगी बनते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, पार्टिसिपेटिव होते हैं और कंस्ट्रक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम अशांत होते हैं ना, इनमें से कुछ भी नहीं करते, नॉन एक्टिव हो जाएंगे। मन में अशांति है तो आलस भी आता है, एक्टिवनेस नहीं रहता, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, विथड्रॉ करेंगे, आपको जो करना करो मेरे को तो छोड़ दो, क्विटिंग एटीट्यूड आता है। क्विटिंग मतलब आप करो भाई मेरे को मत बुलाओ। मिलनसार नहीं होते हैं जिसका मन अशांत होता है। तो शांति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या ये सिर्फ आश्रम के लिए रहने वालों के लिए है? हाँ जी बताओ जी, आपको शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? आज के समय में शांत मन ही शक्तिशाली मन है। शांत मन शक्तिशाली मन है, और शक्तिशाली मन ही शांत रह सकता है। और शांति का मतलब ये नहीं कुछ नहीं करो, नहीं, शांति का मतलब जो करना है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए उससे अपने को दूर रख रहे हैं। इसका मतलब मन में पूर्ण कंट्रोल है, ठीक है। तो राजयोग के अभ्यास से ये सारी बातें प्रैक्टिकली होती हैं। और आप छोटे बच्चों को कहो, अगर हम छोटे बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, जैसे हमारे आश्रम में परिवार आते हैं, तो उन परिवारों में बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, यूथ भी आते हैं, सभी आते हैं, कॉलेज के बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। जो इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बड़े प्यार से सिखाते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस लेवल पर उनको सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, वैल्यूज की बातें सिखाते हैं। हमें लगता है ना ये बच्चे हैं, ये कुछ नहीं समझेंगे, इनको क्या पता आध्यात्मिकता क्या होती है, सबसे ज्यादा वही समझते हैं, सबसे ज्यादा वो बहुत अच्छा समझते हैं, और उनको बहुत अच्छे संस्कार देने का वो समय होता है। ठीक है, ऐसे युवाओं को आज बहुत जरूरत है। तो मेडिटेशन हर उम्र के लिए है, कोई ये ना सोचे 60 वर्ष के बाद करेंगे, अरे उस समय क्या फायदा, वो तो जीवन में जो कर चुके होंगे उसका रिजल्ट सामने होगा। इस समय जरूरत है ना, चैलेंज हमारे सामने इस समय है, परिस्थितियां इस समय है, शक्ति की जरूरत आज है, राइट इनपुट की जरूरत आज है, गाइडेंस की जरूरत आज है, उस समय करेंगे क्या? वो तो उस समय कर चुके होंगे, जो कर चुके होंगे उसी का रिजल्ट सामने होगा। बच्चों को जरूरत है, युवाओं को जरूरत है, परिवारों को जरूरत है, प्रोफेशनल्स को जरूरत है, इस समय जरूरत है ना। ड्यूटी में दिक्कत आ रही है, लोगों के साथ मिलने जुलने में दिक्कत आ रही है, संबंधों में टकराव आ रहा है, इस समय मेडिटेशन नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब सब कुछ हो चुका होगा तब? क्या फायदा क्या है? हाँ, तो इसलिए ये भ्रांतियां छोड़ना है। अरे ये तो बुजुर्गों का काम है, हम जब लोग छोटे होते थे ना तो हमें देखकर कई लोग कहते थे अरे आपने तो अभी दुनिया ही नहीं देखी। क्या नहीं देखा भाई दुनिया में, क्या है देखने को? ऐसा मेरे को तो ऐसा लगता है आपसे ज्यादा दुनिया तो हम देख रहे हैं आज के समय में, और ये सत्य है। ठीक है, तो राजयोग, योग माना कनेक्शन, तो अपना कनेक्शन अपनी आत्मा के साथ, अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ हमें अच्छा रखना चाहिए। उससे हमारे मन की स्थिति में श्रेष्ठता आती है, विचारों में ताकत आती है, वाणी में शक्ति बढ़ती है। फिर वो विचारों में अगर ताकत आएगी, सतोगुणी संस्कार हमारे गुण बढ़ेंगे, तो क्या होगा, नेचुरली हमारे व्यवहार के अंदर भी कुशलता आती है, कर्म में कुशलता बढ़ती है। ठीक है, अच्छा मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? बिना मेडिटेशन के भी तो लोगों का काम चल ही रहा है ना, आध्यात्मिकता के बिना भी लोग जी रहे हैं, जी तो लेंगे पर कैसे, थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर लेंगे, थोड़ा चिड़चिड़ेपन के साथ, थोड़ा इरिटेशन के साथ, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ, थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा करते हुए आपस में घर में, थोड़ा रोते हुए, थोड़ा तनाव के साथ, ऐसे तो जीवन चल जाएगा। ऐसा ही जीवन चाहिए क्या? ऐसा ही जीवन चाहिए? कैसा चाहिए? खुशी, शक्ति, शांति से भरपूर जीवन हो, परिवार आपका श्रेष्ठ वातावरण में हो, परिवार के सदस्य सशक्त आत्माएं हो, ऐसा जीवन चाहिए ना। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए राजयोग का नियमित रूप से जब हम रोज अभ्यास करते हैं, कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं ना लोग, आपने देखा होगा जो महीने में एक बार दो बार वॉकिंग में चले जाएंगे, या एक दिन बड़ा जोश आता है एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, क्या होता है, बड़ा दर्द होता है। जो रोज नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, उनको जब भी करेंगे ना बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? स्टिफनेस आ गई है। ऐसे ही मेडिटेशन, राजयोग, ये कभी कभी करने वाला काम नहीं है, कभी कभी करेंगे तो वो प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा खाना आप हफ्ते में एक बार खाते हैं, कितनी बार खाते हैं? हाँ जी, कोई कोई पूछते हैं बहन जी मेडिटेशन कब तक करना चाहिए, हम कहते हैं खाना जब तक खाना है तब तक, है ना। मन की शक्ति कब तक चाहिए? सारा जीवन चाहिए। आज रोज चैलेंजेस हमारे सामने हैं, आज रोज परिस्थितियां हैं, आज रोज हमारी आत्मा को श्रेष्ठता की जरूरत है। तो आत्मा के लिए जो भोजन है ज्ञान योग का, वो भी हमें रोज ग्रहण करना पड़ेगा ना, और उसके लिए 24 घंटे में से मैं कहती हूं 23 घंटे आपके, जो मर्जी करो, पर आधा पौना घंटा रोज अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जरूर निकालिए, ताकि बाकी 23 घंटे ठीक से चले। यस, मेक सेंस? हाँ, होना चाहिए ना ऐसा। हाँ, 23 घंटे अच्छे चले, इसलिए आधा पौना घंटा नियमित रूप से निकालेंगे, आपका जीवन इतना सुखद होगा, अच्छा हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, आपके आसपास में भी आप अन्य आत्माओं को भी एम्पावर कर सकेंगे। आज युवाओं में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग अनुभव करते होंगे घरों में, मोबाइल एडिक्शन हो गया, वो हमारे पास लेके आते हैं, बहन जी कुछ तो समझाओ इसको, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। बच्चों से कहते हैं, बहन जी कुछ तो समझाओ, मेरे बच्चे से बात करो, ये पढ़ाई में ठीक नहीं है, ये बोलता नहीं है, ये खुश नहीं रहता, ये मेरा बच्चा बड़ा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, उल्टा बोलता है। अरे जो शक्ति हमारे अंदर है वो आपके अंदर भी है, आप खुद अपने बच्चों को एम्पावर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले इधर भरना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा है लाखों परिवार, आपको पता है ना, शायद किसी ने बताया भी होगा अभी तक, ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी लोग जुड़ते हैं, यहां जुड़ने का मतलब नाम लेना नहीं होता, यहां कोई नाम लेने का सिस्टम नहीं है, ठीक है, यहां कोई गुरु सिस्टम भी नहीं है, लेकिन यहां पर जितने भी लोग मेडिटेशन सीखने आते हैं, 24 घंटे में से एक घंटा क्लास करने आते हैं बस सेंटर्स पर, बाकी 24 घंटे 23 घंटे में वो अपना काम करते हैं, अपने बाल बच्चे संभालते हैं, कारोबार में जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, घर संभालते हैं, वो सब कुछ करते हैं। 98% कितनी बड़ी बात है, 98% लोग जो इस संस्था से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं वो परिवारों में रहते हैं। सिर्फ 2% ऐसे हैं, 1.5% या 2% जो हम जैसे जीवन को समर्पित करने का जो निर्णय लेते हैं, जो आश्रम में रहते हैं, सिर्फ 2% है। 98% तो परिवारों में रहते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं और बहुत अच्छा अपने परिवारों में कर रहे हैं, और हम कहते हैं परिवार को संभालना आपकी पहली जिम्मेवारी है, क्योंकि आपने वो क्रिएट किया हुआ है, आपकी रचना है ना, संभालेगा कौन, आप ही को संभालना है ना, लेकिन उसको, उस परिवार को संभालने के लिए जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो आप मेडिटेशन से लो और अपने घर में जाके अच्छे से संभालो। आध्यात्मिकता ये कहती है, आध्यात्मिकता का मतलब छोड़ना नहीं है, अपनाना है। क्या अपनाना? जो राइट है वो, जो अच्छा है वो, जो आजकल के समय में हमें उपयोगी है वो। तो ज्ञान और योग, योग मना राजयोग, मना स्वयं पर जो राज्य करना सिखाए। आप अपने घर में अगर स्वर्ग नहीं बना पाएंगे तो दुनिया में स्वर्ग कैसे आएगा, है ना? तो ऐसे। और दूसरा, यहां पर खुली आंखों से हम मेडिटेशन करते हैं, आपने देखा होगा, है ना? आपको कई बार लगता है आंखें बंद करने से ज्यादा अच्छे से होता होगा, इसके दो मुख्य कारण है क्यों खुली आंखों से करना चाहिए। एक, मान लीजिए हम आपको यहां पर कहते हैं, अच्छा ठीक है आप आंखें बंद करके कर लो, तो जब आप दो दिन के बाद वापस अपने घर जाएंगे, आपकी जो दिनचर्या होती है ऑफिस में, घर में, परिवार में, समाज में, सारे दिन में आपको आंख बंद करने का टाइम कब मिलता है? कब मिलता है? रात को। उस समय तो सोना होता है, तो फिर मेडिटेशन कब करें? न रात में हो रहा है न दिन में हो रहा है। राजयोग का अभ्यास ऐसा अभ्यास है जिसको आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, यहां तक अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो आप किसी से बातचीत करते समय भी मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं। अगर आपको सामने से कल ऑफिस में या ड्यूटी पर, घर में, परिवार के अंदर, समाज में, अड़ोस पड़ोस में कोई आपसे कोई ऐसी ऐसी बात कह रहा है, बहुत रिएक्शन आ रहा है, आप ऐसे हो, ये करते हो, वो करते हो, कुछ नहीं है, पता नहीं कैसे हो, कोई कुछ कह रहा है, उस समय हम ये थोड़ी कहेंगे रुको भैया मैं आंख बंद कर लेती हूं, मुझे मेडिटेशन करने दो, शांत होने दो, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। हमारे सामने जो भी बातें आती हैं हमें रिस्पॉन्ड करना होता है ना उसी समय। तो हमारे रिस्पॉन्सेज अच्छे हों, ठीक हों, हमारे ऊपर पूरा नियंत्रण हो, उसके लिए क्या जरूरी है? बीच बीच में योग करना, ताकि बीच बीच में कोई परिस्थिति आ जाए तो उस योग की स्थिति में हम रिस्पॉन्ड करें तो कोई गलती ना हो, है ना? ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छी प्रथा है, एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपने महसूस किया होगा सारे दिन की दिनचर्या के अंदर कुछ ऐसे फिक्स्ड टाइमिंग्स होते हैं, बीच बीच में घंटे डेढ़ घंटे में एक बार एक गीत बजता है, एक म्यूजिक बजता है, और जब भी वो म्यूजिक बजेगा ना, हम लोग क्या करते हैं, हर उस टाइम पर जब वो गीत बजेगा म्यूजिक बजेगा तो 3 मिनट का पॉज लेते हैं। जो कोई जहां कहीं भी सेवा कर रहा होगा वो रुक जाएगा और रुक करके उस समय 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, या 1 मिनट का मेडिटेशन होता है। क्या करते हैं, 2 चीजें करते हैं, आत्मिक चिंतन, मैं कौन हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति शरीर से भिन्न हूं, हां शरीर के अंदर बैठकर मस्तक में बैठकर मैं आत्मा रूपी ड्राइवर अपने सारे कर्म इंद्रियों के द्वारा आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं, हाथ पांव से कर्म कर रही हूं। इस प्रकार के आत्मिक आत्मा से संबंधित श्रेष्ठ विचार मन में आते हैं और दूसरा भगवान को याद करते हैं। ये 2 काम हम उस 3 मिनट में या 1 मिनट में कर लेते हैं। तो जब बार 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 हम ये कर रहे हैं, बीच में हर घंटे डेढ़ घंटे में कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहां पर ट्रैफिक कंट्रोल्स कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड ऑफ थॉट्स। तो बार बार स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो स्पीड तो नियंत्रण में रहेगा ना। जब बार बार स्पीड ब्रेकर आते हैं तो स्पीड जरूरत से ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकता कोई, पता है बार बार ब्रेकर आ रहा है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल बहुत मदद करता है। बीच बीच में योग करना, चाहे आप ऑफिस में हैं। अच्छा ये बताइए, आप टेंशन लेने के लिए कोई अलग टाइम फिक्स करते हैं क्या? अच्छा अभी मुझे 4 से 5 बजे स्ट्रेस लेना है, 1 से 2 बजे के बीच में खूब टेंशन ले लेना है, ऐसे नहीं। चाहे वो स्ट्रेस हो टेंशन हो, सारे कामकाज करते हुए ही तो ले रहे हैं ना। तो जब सारे कामकाज करते हुए हम स्ट्रेस भी ले रहे हैं, टेंशन भी आ रहे हैं, बहुत हलचल में भी आ रहे हैं, रनिंग थॉट्स भी चल रहे हैं, तो क्या सारे कामकाज करते हुए हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन नहीं कर सकते? पॉसिबल नॉट पॉसिबल? किस किस को लगता है ये संभव है? हाँ, क्योंकि सिंपल बात है ना, जब हम स्ट्रेस वाले थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं कर्म करते हुए, व्यर्थ संकल्प चला सकते हैं, नेगेटिव संकल्प चला सकते हैं, यूं ही मन को दौड़ा सकते हैं, तो क्यों ना मन को आत्मा और परमात्मा से जोड़े। पर इसके लिए अभ्यास चाहिए और अभ्यास के लिए मुझे सीखना पड़ेगा, है ना। इसीलिए वो जो 7 दिवसीय कोर्स हमने बताया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ समय ही तो निकालना है, और ये आपको बहुत लाभ देगा, बहुत लाभ देगा। ओके, तो अब देखो आज लोग भगवान को याद तो करते हैं ना, कैसे याद करते हैं बताओ, कैसे याद करते हैं आज लोग भगवान को? बताया ना, 2 चीजों से मन की शक्ति बढ़ती है, एक आत्मचिंतन से और एक ईश्वर को याद करने से। लेकिन आज लोग ईश्वर को याद कैसे कर रहे हैं जी? कल बताया था आपको, हाँ बताया था ना ये पॉइंट, बच्चा पास करा दो, मेरी मकान बना दो, मेरा ट्रांसफर करा दो, मेरा ट्रांसफर रुकवा दो, प्रमोशन करवा दो, हाँ देख लेना ये काम हो रहा है करवा देना, ये बार्टर सिस्टम चलता है। अगर आप ये मेरा काम पूरा करोगे तो मैं ये करूंगी, जब तक नहीं करोगे मैं नहीं करूंगी। इसको याद नहीं कहते हैं, इसमें शक्ति नहीं है, ये फरियाद है। फरियाद में जब हम लिस्ट के साथ भगवान को याद करते हैं ना, उसको कहते हैं फरियाद, और उस फरियाद में शक्ति नहीं होती है, ईश्वर की याद में शक्ति होती है। और याद कैसी? निस्वार्थ भाव से, प्यार से, प्रेम से, दिल से, हर रोज हर कर्म के साथ बड़े प्यार से आत्मा अपने परमात्मा पिता को याद कर रही है। भगवान होगा वो दुनिया का, मेरे लिए तो मेरा पिता है, इस संबंध से याद कर रही है। ऐसी याद में शक्ति है। अच्छा बताओ, जब तक आपका बच्चा खाना नहीं मांगेगा आप खाना नहीं दोगे क्या? जब तक आपका बच्चा स्कूल के लिए पेंसिल रबर पढ़ाई की चीजें बुक्स यूनिफॉर्म नहीं मांगेगा तब तक लेके नहीं दोगे क्या? खिलौने जब तक वो मांगेगा नहीं तब तक दोगे नहीं क्या? और उसको हर बार मांगना पड़ेगा क्या? बताइए, आप लोग पेरेंट्स हैं ना, बिना मांगे दोगे नहीं क्या अपने बच्चों को? करते हो ना, माता पिता है। ऐसे ही वो मुझ आत्मा का, आप आत्मा का सत्य पिता है। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार मेरा मकान बन रहा है, उसको पता है। एग्जाम पास करना, मकान बनाना, दुकान करना, गाड़ी, ये वो, ये भगवान का काम नहीं है, भगवान नहीं करते हैं, ये तो हम खुद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सब करने के लिए जो हमें वैल्यूज चाहिए, शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, हमारे अंदर की खजाने चाहिए, इन सबको पूरा करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन पावर चाहिए, फोकस चाहिए, वो शक्तियां परमात्मा देते हैं। है ना? तो निस्वार्थ भाव से, प्यार से, प्रेम से, दिल से, रोज हर कर्म के साथ भगवान को याद करो। जितनी जितनी बार हम ऐसे ईश्वर पिता को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, एक एक बार मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है, एक एक बार चार्ज हो रही है। और जब लंबा समय, थोड़ा समय हम ऐसा करते रहेंगे ना, तो आपको खुद महसूस होगा, अपने अंदर एक असीम सी शक्ति का आभास होगा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आपके आप होता क्या है। कई बार जब कोई सामने से कोई व्यक्ति हमको कुछ कहता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सत्यता बहुत लोगों के साथ ऐसा भी है कि हमारे ही नजरों में हमारी वैल्यू कुछ खास नहीं है। समझ आ रहा है? हमारी नजरों में अपनी वैल्यू कुछ खास नहीं है। सामने वाला बोलता तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर हमारी नजरों में भी क्या वैल्यू है हमारी? तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, कौन हूं मैं? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं आत्मा सशक्त आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक संतान किसकी हूं? कौन हूं मैं? मैं परमात्मा शिव की संतान हूं। एक ऐसी हस्ती जिससे ऊंची कोई हस्ती नहीं, उस ईश्वर की मैं डायरेक्ट संतान हूं, उस ईश्वर का बच्चा हूं मैं। ये बार बार मुझे याद रखना है, स्मृति में रखना है, कौन हूं मैं? जब कोई कलेक्टर का बच्चा हो, किसी मिनिस्टर का बच्चा हो, कोई वीआईपी का बच्चा हो, तो क्या कहेंगे? बात बात पे क्या बोलेगा? आपको पता है मैं कौन हूं? कहते हैं ना, वो रौब, वो रुहाब उनके बातों में झलकता है। आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? ऐसे ही जब भी आपके सामने कोई ऐसी बात आए, जब आपके सामने कोई कुछ कुछ बोले, तो अंदर एक संकल्प करना, इनको पता नहीं है मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? परमात्मा का बच्चा हूं। क्या चाहते हो अभी आप? मैं शांत रह सकता हूं क्योंकि मैं शांति के सागर की संतान हूं। आपको पता नहीं है मैं कौन हूं? अंदर ही अंदर बोलना, उनको मत कह देना। इस बात का नशा रहना चाहिए, मैं कौन हूं। हमारी दादी जी, जो जानकी दादी जी थे, जो 104 वर्ष की आयु तक जिन्होंने इस संस्था के मुख्य प्रशासिका रही और संभाला और सेवाएं करी, वो हमेशा तीन बातें कहते थे। और राजयोग का मूल मंत्र जो है वो यही तीन बातों में है, सारे ज्ञान का सार। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। जब भी कोई बात होती थी, आप खुद सोच के देखो, आप लोग तो एक 4-6 लोगों का परिवार संभालते हो ना, ज्यादा से ज्यादा भी कितना होगा, ज्वाइंट फैमिली भी होगी तो 8-10 लोग होंगे आपके परिवार में। हमारी दादी जी जिस परिवार को चला रही थी, और हमारी दादियां आज भी जो चला रही हैं, वो परिवार लाखों आत्माओं का है। हजारों आत्माओं का है, कैसे चलाया? दादी हर बात में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, हर बात में जब भी कोई ऐसी बात हो ना, तुरंत आत्मा मन में स्मृति लाओ, कौन हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, कौन हूं मैं, ऐसी आत्मा जो भरपूर हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कौन हूं मैं, सशक्त आत्मा हूं, कौन हूं मैं कमजोर नहीं हूं, कौन हूं मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मेरा कौन, ईश्वर मेरा पिता है, मैं उस सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मुझे क्या करना है, अच्छा अभी ये बात है, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये राइट है, बताओ। ये तीन बातें अगर हम बार बार याद रखें सारे दिन की दिनचर्या में, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, तो बताओ हम बार बार रिएक्शन करेंगे, गलती से मुख से अपशब्द निकलेगा, नहीं निकल सकता, ठीक है। तो राज्यों के, ऐसे तो आपका एक अलग चैप्टर भी है, शायद एक क्लास है कल आपकी, जिसमें पावर्स थ्रू राज्यों का, जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं ना, तो हमारी कुछ आंतरिक शक्तियां नेचुरली विकसित होती हैं, अष्ट शक्तियां जिसको कहते हैं, आज हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पर राजयोग के अभ्यास से हमारी आत्मा की नेचुरल पावर्स जो डेली रूटीन में काम आती हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति वगैरह वगैरह, निर्णय करने की शक्ति और भी है इसमें, तो ये शक्तियां नेचुरली काम करती हैं अच्छे से, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए अब बताओ राजयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना तो चाहिए, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, कभी कभी वाला, जैसे मंदिर में महीने में एक बार घंटी बजा के आना ऐसे, या फिर माउंट आबू से निमंत्रण मिले, आ जाओ 3 दिन के लिए, हाँ अगले साल जरूर आएंगे, आपको यहां आकर के अच्छा लगेगा, क्योंकि वायुमंडल ही है, ईश्वर का घर है, सब कुछ ज्ञान योग के आधार पर चल रहा है, नेचुरली अच्छा तो लगेगा, पर ये अच्छाई आपके जीवन में उतर आए, तभी तो आपके यहां आने का फायदा तो तभी है ना, ये आपके साथ सदा रहे तभी तो फायदा है ना। तो वो कैसे रहेगा? वो आत्मिक स्मृति, परमात्मा स्मृति के साथ रहेगा, ठीक है। चले अभ्यास करें, चलो। अच्छा, खुली आंखों से जो मैं कह रही थी ना, दो रीजन से, उसमें से एक तो बताया कि आपको, ताकि जीवन में कभी भी कुछ भी करते समय खुली आंखों से, जब आप कर्म क्षेत्र में होते हैं, परिवार में, ऑफिस में, सब जगह पे, तब आप मेडिटेशन कर सकें, इसलिए यहां पर वो ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ताकि आप अपने मन को ट्रेनिंग दे सकें, मन को ट्रेन कर सकें, आंखें खुली होते हुए भी मन एकाग्र हो सके। आपको पता है हम आंखें बंद क्यों करते हैं? क्यों बंद करते हैं बताओ? हम इसलिए ये दोनों आंखें बंद करते हैं क्योंकि हमें पता है इन ये दो आंखें खुली रहेंगी ना तो इन आंखों के सामने जो कुछ है मेरा मन उसके पीछे भाग जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, शटर डाउन करते हैं। चलो कम से कम आंखें बंद करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, तो मन एकाग्र होने की संभावना है, इसलिए हम आंखों को बंद करते हैं, क्योंकि अभी ये वाला तीसरा नेत्र अभी हमारा पूरा जागृत नहीं है, आत्मा की जागृति पूरी नहीं हुई, इसलिए ये आंख से अभी दिख नहीं रहा, हम इन दोनों आंखों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। और दूसरा, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं खुली आंखों से करते हैं, क्यों करना चाहिए खुली आंखों से? अभी देखो, मान लो चलो 2 दिन हम आपको यहां कहते हैं ओके, 1-2 दिन आपको अच्छा सा महसूस हो रहा है, वातावरण का भी सपोर्ट है, ठीक है, बंद आंखों से कर लो, आपको लगेगा बहुत अच्छा कंसंट्रेशन हो रहा है आंखें बंद करके। मान लीजिए आप अपने वापस घर में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, प्रोफेशन ड्यूटी में जाते हैं, जहां पर भी आपका है कर्म क्षेत्र वहां जाते हैं, किसी दिन कोई बात हो गई किसी के साथ, किसी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ हो गया, कोई बात हो गई, अब वो बात मन में बैठ गई है, अब हम सेंटर पर, आप सेंटर पर आते हैं और हम कहते हैं भैया जी, बहन जी, मेडिटेशन करिए, हमने लाइट भी ऑन कर दिया, कमेंट्री भी चल रही है, म्यूजिक भी चल रहा है, आपके मन में वो बात घर करी हुई है, अब चाहे आंख बंद कर लो चाहे खुलवा लो, योग तो नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि बात आंखों की तो है ही नहीं, बात मन की है। जिस मन ने योग लगाना है वो किसी प्रभाव में है, दूसरे प्रभाव में। बात तो आंखों की है ही नहीं, बात मन की है। तो मन को हमको ट्रेनिंग देना है कि वो कहीं पर भी रहते हुए, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए, किसी भी संगठन में रहते हुए, जब चाहे अपने मन को जहां लगाना चाहे लगा सके। जब कोई ऐसी वैसी बात हो रही हो उस समय हम मन की स्थिति को स्थिर रख सकें। जब कुछ ऐसी वैसी बात कोई कह रहा हो उस समय मेरे मन में शांति ला सकूं, मैं फिर रिस्पॉन्ड कर सकूं। ये ठीक है ना? ये तभी हो सकता है जब हम मन को ट्रेनिंग दें खुली आंखों से भी मेडिटेशन करने की। अब जैसे आपको तो हम कहते हैं, आपको हम कहते हैं कि यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको देखना, उस पर आंखें टिका लेना और उसको देखते हुए हम जो कहते हैं उसको मन से फॉलो करो। लेकिन आपको पता है थोड़े समय के बाद आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे हम तो इस तरफ बैठे हैं, हमारे सामने हो सकता है ये दीवार ही है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये ठीक होता है, ठीक है, इजी हो जाता है। अच्छा, एक और बहुत मुख्य कारण आंखें खुली करके क्यों योग करना चाहिए, क्योंकि आत्मा मेडिटेशन के दौरान बहुत ही सकारात्मक विचारों में रहती है। आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन से अधिक पॉजिटिविटी किसी चीज में नहीं होती है। इससे ज्यादा सकारात्मक विचार कुछ नहीं हो सकता है जो प्योर आत्मा से संबंधित हो और परमात्मा से संबंधित हो, परमात्मा की सत्यता से संबंधित हो। इससे ज्यादा पॉजिटिविटी किसी थॉट में नहीं होता है। जब हम इतने श्रेष्ठ विचारों में आत्मा है, मन में इतने अच्छे विचार क्रिएट हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी जो एनर्जी है वो कहां से बाहर आएगी? ये दो आंखें जो हैं, ये जो दो नैन हैं, वो आत्मा के सबसे नजदीक वाली कर्मेंद्रिय है, सबसे नजदीक वाला वेंट है ना? तो श्रेष्ठ विचारों की जो एनर्जी है, सकारात्मक एनर्जी है, वो सबसे पहले क्या होती है? आंखों के द्वारा बाहर आसपास के वायुमंडल में फैलती है और उस वायुमंडल का हमको सहयोग मिलता है योग करते समय। और उस वायुमंडल के अंदर जितनी भी आत्माएं प्रवेश करेंगी उनको भी उस वायुमंडल का सुख मिलेगा, जो आपके विचारों के कारण, वाइब्रेशंस के कारण वो वायुमंडल बना है। क्लियर हो रहा है? मेक सेंस? समझ आ रही है? आपको लगता है खुली आंखों से करना चाहिए? क्या लगता है बताओ? और इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है बंद आंखों से करने का? बाकी आपकी इच्छा है, नींद आ जाती है। और कई लोग कहते हैं वाह बहुत अच्छा योग लगा, इतनी शांति मिली। मिलेगी ना, नींद में तो शांति ही होती है, और क्या होता है? तो इतनी अच्छी नींद अगर हमें बेड पे आ जाए तो अच्छी बात है। वही दिक्कत हो रही है, बेड पे नींद नहीं आ रही, और जहां नहीं आनी चाहिए वहां बहुत नींद आ रही है, गड़बड़ हो रहा है ना। तो जब हम राजयोग करते हैं तो जिस समय जो करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, मन, आत्मा अपने मन और बुद्धि को चलाती है, अनुशासित करती है। कुछ लोग कहते हैं इसके लिए तो बड़ा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कंट्रोल एक बहुत हार्श शब्द है, बहुत कठिन शब्द लगता है, कंट्रोल लाना। जब हमारा मन शांत होता है तो हम कंट्रोल में होते हैं, जब हमारा मन शक्तिशाली होता है हम कंट्रोल में होते हैं, जब हमारा मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, संतुष्ट होता है, हम कंट्रोल में होते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल कब जाते हैं? जब खुशी, शक्ति, शांति घट जाती है, तभी तो रिएक्शन आते हैं, तभी तो हम रिएक्ट करते हैं, तभी तो गुस्सा आता है, तभी तो चिड़चिड़ करते हैं। तो कंट्रोल नहीं करना, सत्वगुणी संस्कारों को जैसे ही हम बढ़ाएंगे, क्योंकि योग करते हैं तो हमारी आत्मा के गुणों में वृद्धि होती है, ज्ञान में, ज्ञान माने समझ विकसित होती है, पवित्रता बढ़ती है। आज लोग कहते हैं बहुत अशांत है मन, बहुत अशांत है। आपको पता है आज संसार में लोगों का मन बहुत अशांत है, इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? आपको क्या लगता है लोगों में अशांति ज्यादा है या शांति ज्यादा है? पता है क्यों? इन गुणों का आपस में कनेक्शन है। आज लोगों का मन बहुत अशांत है क्योंकि ज्यादातर आत्माओं के यहां पर मन के अंदर बहुत सारी प्रकार की अपवित्रताएं हैं, इम्प्योरिटीज भरी हुई है। जितना अपवित्रताएं काम करेंगी उतना ज्यादा मन अशांत रहेगा, उथल पुथल में रहेगा, हलचल करता रहेगा, तंग करता रहेगा। राजयोग के नियमित अभ्यास से हमारी मनसा वाचा और कर्मणा में प्यूरिटी आती है। प्यूरिटी का मतलब स्वच्छता, सफाई, सच्चाई और शुद्धता। आत्मा पवित्र बनती है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आती है तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि शांति का संबंध पवित्रता से है। और जिसके मन में प्योरिटी हो, शांत हो, सकारात्मकता तो अपने आप आएगी, शक्ति तो अपने आप बढ़ेगी, आनंद तो अपने आप ही आएगा, क्योंकि मस्त रहेंगे, हल्के रहेंगे। पवित्र मन हल्का होता है, पवित्र मन खुश होता है, पवित्र मन शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो करें अभी अभ्यास। चलो सीधे होकर आराम से बैठिए, कोशिश करके अलर्ट होकर के बैठना। बहुत ज्यादा पीछे लटक के बैठते हैं ना तो आराम होने के कारण नींद आ जाती है। तो सीधा एक योगी की तरह बैठो, और जो आपके हाथ में है ना उसको साइड में कहीं रख दो। हाथों को फ्री रखना, पैरों को आराम से जमीन पर टिका दो, और 5-7-10 मिनट के लिए, हम 10 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, 10 मिनट के लिए कोशिश करिए कि आप अपने शरीर को अभी ऐसे बिठा दीजिए आराम से कि दोबारा उसको हिलने की जरूरत ना पड़े। पैर हिलना, हाथ हिलना, गर्दन हिलना 5-7 मिनट के लिए आप नहीं करना। आराम से कंधे ढीले छोड़कर बैठ जाओ, आंखें आप झपका सकते हैं। ठीक है, चलिए इस म्यूजिक को अगर साउंड सिस्टम से कनेक्ट कर दे तो अच्छा है। कोई बात नहीं, बिना म्यूजिक के भी हम कर लेंगे, ठीक है ना? चलो आ रही है। गर्दन सीधी रखें, नीचे झुकाकर नहीं रखना। अपनी आंखों को सामने जो स्लाइड पर मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मिक शक्ति दिखाई पड़ रही है उस छवि पर अपनी आंखों को टिका लीजिए, और जैसे जैसे आपको कमेंट्री के शब्द मिलेंगे मन से मुझे फॉलो करिएगा, और आपका सारा ध्यान आपके अपने विचारों पर होना चाहिए। आंखों को स्क्रीन पर चमकते हुए मस्तक मणि पर टिका ले। अब जरा ध्यान से देखें, मन की आंखों का भी प्रयोग करें और तन की आंखों का भी प्रयोग करें। उसको देखते हुए एक बार अपनी जीवन को देखें, अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं। जरा देखें आज दिन तक के जीवन के सफर में, बचपन से लेकर आज दिन तक आपके विचारों की क्वालिटी क्या रही है। आपके विचार आपके थॉट्स कैसे रहे हैं? बचपन से आज दिन तक के सफर में आपकी वाणी, आपके शब्दों की क्वालिटी क्या रही है, चेक करें। आज दिन तक के जीवन के सफर में आपका व्यवहार, आपके कर्म की क्वालिटी ज्यादातर कैसी रही है? हर एक के साथ आपका व्यवहार, आपके कर्म अधिकतर कैसे रहे हैं? अंदर ही अंदर चेक करें। जैसे सागर की लहरें जब जोर से उछाल खाती हैं, तो शोर और हलचल होती है। कहीं ऐसा तो नहीं? चेक करें हमारे अपने ही मन के विचार, आपके अपने ही मन के विचार आपको कभी कभी शोर और हलचल महसूस कराते हो। अब इस समय आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, उन थॉट्स को आने दें, रोके नहीं, पर उसकी गति को कम करें। आराम आराम से सोचें, आप ये कर सकते हैं। एक एक करके विचार आए और चला जाए। और धीमा करें अपने सोचने की गति को। जैसे धीरे धीरे विचारों की ट्रैफिक आपके मन के अंदर थम सी रही है, रुक सी रही है, विचारों की गति धीमी करें। जैसे ही आप अपने विचारों को धीमा करते हैं, आपको अपने अंदर एक साइलेंस, एक शांति जरूर महसूस होगी। सारा ध्यान अपने श्वासों पर लाएं। आपके विचारों में जो शांति है, आपके श्वासों में जो शांति है, उसको जरा ध्यान से सुनें। देखें कैसे श्वास आ रही है और जा रही है। अपनी आती जाती श्वासों के बीच जो स्पेस है, उस साइलेंस को जरा ध्यान से सुने। आराम आराम से गहरी श्वास लेते रहें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जैसे जैसे आपके श्वासों की शांति आपको फील हो रही है, धीरे धीरे आपके विचारों में भी शांति महसूस हो रही है। अब सामने देखें, मन की आंखें खोल कर देखें। जो मस्तक का सितारा दिख रहा है, मान लीजिए उसमें अभी अभी रोशनी भर जाए, तो मन से चित्र बनाए कैसा दिखेगा वो सितारा। उसकी रोशनी, उसका रंग, सुनहरे रंग का प्रकाश, चारों ओर निकलती हुई छोटी छोटी प्रकाश की किरणें, कितना सुंदर स्वरूप है इस मस्तक के बीच चमकती आत्मा का, महसूस करें। आपकी दोनों आंखों के पीछे, आपके मस्तक के बीच, आपकी सत्यता, आपकी वास्तविकता सदा विराजित रहती है। अपनी अंदर की ऊर्जा को अनुभव करते हुए, मन की आंखों से देखते हुए संकल्प करें, कौन हूं मैं, आखिर कौन हूं मैं, क्या मैं वो हूं जो दुनिया देख रही है, क्या मैं वो हूं जो लोग मुझे समझते हैं, क्या मैं वो हूं जो तुम्हें दिखाई पड़ता हूं, कौन हूं मैं, मन में जवाब दे, मैं एक चमकता हुआ, इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, किसका हूं मैं, कौन है मेरा, तो आपके मन में एक चित्र बनता है। परमधाम आसमान से बहुत दूर, आसमान के भी पार से एक ऐसा धाम जो शांति का देश है, जो आपका अपना घर है, जहां से हम सभी आत्माएं इस संसार में आए हैं, जहां से परमपिता परमात्मा, वो निराकार शक्ति जो हर धर्म की आत्मा का पिता है, वो जो आपका सत्य पिता है, उस शांति के देश से महसूस करें, यहां बैठे बैठे परमात्मा की प्यार भरी, स्नेह भरी, पवित्र ऊर्जाओं से भरी किरणें लगातार आपकी आत्मा पर पड़ रही है। आने दे उन किरणों को अपने अंदर, आने दे। परमात्म शक्ति जिसको सारा संसार अल्लाह, गॉड, ईश्वर, भगवान के रूप से याद करते हैं, वो सर्वशक्तिवान आप आत्मा के सत्य पिता हैं। आने दे उन किरणों को अपने अंदर, स्नेह भरी किरणें, गहन शांति से भरी किरणें, लेजर बीम्स की तरह आपकी आत्मा को स्पर्श कर रही है, बड़े प्यार से, जैसे धूप की कोई किरण किसी के चेहरे पर पड़ती है तो चेहरा प्रकाशित हो जाता है। महसूस करें परमात्मा की, परमधाम निवासी सर्वशक्तिवान ईश्वर की प्यार, स्नेह और सुखदायी शांति से भरी किरणें आप आत्मा पर पड़ रही है, और धीरे धीरे आपका मन पहले से ज्यादा शांत, आपकी बुद्धि पहले से ज्यादा एकाग्र, आपके संस्कार पहले से अधिक श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, आपकी आत्मा की लाइट पहले से ज्यादा उजागर हो रही है। अब महसूस करें आपके अंदर, आपके मस्तक के बीच से बहुत सुंदर आपकी आत्मिक शक्ति, उसका प्रकाश जो अभी अभी परमात्म स्मृति से आपकी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस बने हैं, वो एनर्जी धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में और पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक एक एक सेल में दौड़ रही है। अनुभव करें जैसे नस नस में रक्त दौड़ता है, इस समय आपके मस्तक से निकलती हुई आपकी अपनी ही आत्मा की शांति के सफेद रंग के वाइब्रेशंस की किरणें एक एक नस में, एक एक सेल में, शरीर के हर हिस्से में भरा हुआ है। आत्मा की सफेद रंग की लाइट जिसमें अभी अभी परमात्मा पिता की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, स्नेह, शक्ति और पवित्रता की किरणें हमने भरी हैं, वो शरीर और आत्मा को एक सुखद अनुभव करा रहा है। कुछ सेकंड्स के लिए उस आंतरिक सुख को, आंतरिक शांति को महसूस करें। ओम शांति।